بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. اب روزہ ہے، اس کے اندر دو تین چیزیں بہت اہمیت کے ساتھ میں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کیا ہے. صیام، صوم عربی زبان کا لفظ ہے، تو صوم کے معنی مطلق رکنے کے ہیں، اور اصل میں اصطلاح شریعت میں صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور اپنی نفسانی خواہشات کو عورت کے ساتھ پورا کرنے سے ممانعت کی گئی ہے، اس کے رکنے کا نام روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے سلسلے میں دو چیزیں بیان فرمائیں، روزے کو فرض کیا اور اس کے ساتھ فرمایا، یہ تمہارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے، صوم ایک ایسی عبادت ہے کہ پچھلی تمام امتوں پر کسی نہ کسی طریقے پر، کسی نہ کسی انداز میں اس صوم کو فرض کیا گیا ہے. آج ہماری اس دنیا میں جو مذہب اور جو مذہب سے ماننے والی قومیں موجود ہیں، ان سب کو روزے کا کسی نہ کسی انداز میں، ان کے یہاں روزہ مذہبی عبادت میں داخل ہے، چاہے وہ روزے کے نام سے ہو، چاہے وہ برت کے نام سے ہو، چاہے وہ کسی اور نام سے ہو. بہرحال اللہ کے لیے، اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے کھانے اور پینے سے رکنا، یہ ہر مذہب میں ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور آج بھی وہ کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اللہ اسی کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ایمان والوں پر، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اوپر روزے کو جس طرح فرض کیا گیا، پچھلی قوموں پر اس طرح فرض نہیں کیا گیا کہ ایک پورا ماہ مبارک، ماہ مقدس، چاہے وہ 29 دن کا ہو اور چاہے وہ 30 دن کا ہو، کامل پورے مہینے تک کے یہ روزہ رکھنا ہے، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھانے اور پینے اور اپنی نفسانی خواہشات سے رک جانا ہے، یہی تابعداری. اللہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں اپنی نیابت عطا کی، اپنی خلافت عطا کی، اور اللہ نے مخلوقات میں، ساری مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو قرار دیا. یہ انسان کی خود کسی اپنی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت عطا کی، بنی آدم کو ہم نے اپنی ساری مخلوق پر فضیلت عطا کی، وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے انسان کو یعنی آدم کی اولاد کو خشکی اور تری ہر چیز کا مالک بنا دیا، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے جو جو مخلوق پیدا کی ان مخلوق پر انسان کو فضیلت عطا کی۔ ایک یہاں پر نقطے کی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم اور آپ عام طور پر مخلوق میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل فرشتوں کو سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا ہی سمجھنا نہیں بلکہ خود فرشتوں کو بھی یہ دعویٰ تھا، یہ زوم تھا، یہ خیال تھا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہم۔ اسی لیے قرآن مجید میں موجود ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، جب آپ کے رب نے اعلان فرمایا کہ ہم زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، قالو، فرشتوں نے پیٹیشن دائر کی، رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کی، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار، آپ انسان کو اپنی نیابت اور خلافت ارضی عطا کر رہے ہیں، وہ انسان کہ جو فساد اور خون خرابے کرے گا، زمین میں فتنے پھیلائے گا اور خون خرابے کرے گا، اس کے مقابلے میں ہم آپ کی مخلوق ہیں، ہم موجود ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی نفسانی خواہش ہے، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم قتل و غارت گری کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، اور یہی ہماری غذا ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے، اور اسی پر ہم جیتے ہیں، نہ ہمیں نیند آتی ہے، نہ ہمیں کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے، نہ ہم میں آپس میں ایک دوسرے سے کوئی عداوت اور دشمنی ہے، نہ ہم ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتے ہیں، نہ ہم فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ ہم آپ کی نیابت کے اور خلافت ارضی ہو یا کہیں کی خلافت کو ہو، انسان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، میں نے اسے بھی پیدا کیا، میری ساری مخلوق ہے، میں اپنی مخلوق کی خوبیوں اور خامیوں کو زیادہ جانتا ہوں یا تم؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی میرے فیصلوں میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرو۔ پھر آگے اور تفسیر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی نیابت عطا کیوں کی، اور فرشتوں کے سامنے حجت کیسے قائم فرمائی، اور فرشتوں کو اعتراف پر مجبور کیوں کر کیا۔ میں ان تفسیرات میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی نیابت عطا کی، انسان کو اپنی ساری مخلوق میں کے مقابلے میں فضیلت عطا کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ اللہ نے اپنی تمام صفات میں سے تھوڑا تھوڑا، معمولی معمولی، برداشت کے برابر اپنی ساری صفات میں سے انسان کو حصہ بھی عطا کیا۔ مثال کے طور پر اللہ قادر ہیں، مقتدر ہیں، طاقتور ہیں، انسان کو بھی ایک حد تک طاقت اور قوت اور قدرت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، ہر آواز کو، ہر چیز کو، چاہے سمندر کی تہوں کے اندر ہو اور چاہے غاروں کے اندر کی ہو اور چاہے آسمان کی بلندیوں کی ہو اور چاہے آہستہ ہو چاہے زور کی ہو، ہر آواز کو اللہ سننے والے ہیں، انسان کو بھی اللہ نے سامع بنایا، ایک حد تک صحیح، ایک خاص مسافت تک صحیح، بہرحال انسان کے اندر سننے کی طاقت ہے۔ اللہ بصیر ہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، وہ دلوں کے اندر کے بھید کو بھی جانتے ہیں، انہو علیم بذات الصدور، ان کی صفت تو یہ ہے، لیکن اپنی اس صفت میں سے بھی اللہ نے ایک معمولی مقدار میں انسان کو بھی حصہ دیا، اور اللہ نے انسان کو دیکھنے والا بنایا، उसकी आंखों में बीनाई अता की, एक खास फासले तक, एक खास हिस्से तक बगैर पर्दे के इंसान भी कुछ देख सकता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरतों में से, मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला अक्ल समझ रखते हैं, अल्लाह तबारक व ताला हर चीज को जानने वाले हैं, तो इंसान को भी अल्लाह ताला ने सूझबूझ और अक्ल की दौलत अता की जो हर मखलूक को अल्लाह ने नहीं अता की है। तो इस तरह छोटी छोटी सारी चीज़ों पर आप गौर करते चले जाएं तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी सिफात में से इंसान को चूंकि नायब बनाया था, खलीफा बनाया था इस ज़मीन में, इसलिए थोड़ी 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 सिफत अल्लाह ने अता की। अब एक चीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने तक्वा, रोज़ा, रोज़े के ज़रिए अल्लाह ने क्या अता किया, अल्लाह को खाने की हाजत नहीं, अल्लाह को पीने की हाजत नहीं, अल्लाह तबारक व ताला का कोई नफ्स नहीं, कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं, इसको भी अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें भी बंदे को उसकी बर्दाश्त और उसकी ताकत के बकद हिस्सा अता करने के लिए ये रोज़े की फर्जियत की कि ख़ास हद तक खाना मैसर होने के बावजूद, खाने की ख्वाहिश होने के बावजूद, पानी और प्यास का बुझाने का सामान मौजूद होने के बावजूद और प्यास के होने के बावजूद, अल्लाह का बंदा अल्लाह के हुक्म की तामील में उसकी खिलाफत का हक अदा करने के लिए बावजूद कुदरत रखने के भी खाएगा नहीं, पिएगा नहीं एक ख़ास मुद्दत तक। ये इसलिए ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम ये कह सको कि अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह के कहे पर हम अमल करने वाले। ये है रोज़े की हिकमत। अब एक चीज़ रोज़ों के ताल्लुक से जो समझने वाली चंद बातें, उनमें से एक बात ये है कि अल्लाह तबारक व ताला, एक हदीस कुदसी जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, रोज़ा मेरे ही लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। बज़ाहिर और फरमाएं आप, सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, नमाज भी अल्लाह ही के लिए हो तो नमाज है, तिलावत कुरान भी अल्लाह ही के लिए हो तो तिलावत है, ज़िक्रुल्लाह भी अल्लाह के लिए हो तो ज़िक्र है, अल्लाह की रास्ते में खर्च करना हो तो अल्लाह के लिए है। जो भी इबादत, नमाज हो या हज हो या ज़कात हो या और दूसरी इबादत है, अल्लाह ही के लिए तो है, गैरुल्लाह के लिए हो तो वो इबादत नहीं, शिर्क, वो तो अल्लाह के साथ शरीक करना है जो अल्लाह को पसंद नहीं। तो नमाज का भी अल्लाह की इबादत है और अल्लाह ही के लिए, उसका अजर भी अल्लाह ही की तरफ से मिलेगा, हज भी अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही उसका अजर देंगे, ज़कात भी अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह भी ही उसका अजर देंगे, ज़िक्र भी अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही उसका अजर देंगे। जितनी इबादत हैं जब अल्लाह के लिए हों तभी वो इबादत हैं और उसका अजर भी अल्लाह ही दे सकता है और कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। फिर इसका क्या मतलब हुआ कि रोज़े को मखसूस तरीके पर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, रोज़ा मेरे ही लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। तो अब इसके दो जुज हैं, एक तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे ही लिए, और दूसरा जुज है अना अज्जी बिही, मैं ही उसका बदला दूंगा। एक दूसरी रवायत के मुताबिक फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, रोज़ा मेरे लिए और मैं खुद उसके बदले में दे दिया जाऊंगा। यानी अल्लाह फरमाते हैं अपने बंदे को रोज़े के जजा में मैं खुद अपने को दे दूंगा, ये उससे भी बड़ी बात। तो भाई रोज़ा मेरे ही लिए है क्या मतलब? देखिए नमाज बज़ाहिर हम आप ये समझते हैं कि नमाज एक इबादत है, नमाज अल्लाह के लिए होती है, लेकिन नमाज में रियाकारी हो सकती है, मुनाफिकत हो सकती है। नमाज पढ़ने के लिए हम मस्जिद जाएं, अल्लाह ना करे कि हमारी नियत ख़राब हो सकती है, बज़ाहिर हर वो आदमी जो मस्जिद में नमाजियों की सी सूरज शक्ल बनाकर अजान होने के बाद मस्जिद में दाखिल होता है, तो हम ये समझते हैं कि नमाज पढ़ने ही के लिए जा रहा है। लेकिन उनमें से बात वो होते हैं कि हम समझते हैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद में जूते चुराने के लिए जाते हैं, वो मस्जिद की टोटी चुराने के लिए जाते हैं, वो मस्जिद का बल्ब चुराने के लिए जाते हैं। हम ये समझते हैं कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि हम जो चोरी करने जा रहे हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात और वो ये कि कभी ऐसा भी होता है कि नमाज पढ़ने के लिए जाने वाला अच्छा इरादा लेकर जाता है नमाज पढ़ने ही के लिए, नियत बनता है, इमाम के साथ जमात में शरीक होता है और वो खुद भी ये समझ रहा होता है कि हम नमाज ही पढ़ रहे हैं, हालांकि वो नमाज उसकी नमाज नहीं होती। वजह क्या है? रियाकारी शामिल हो गई, दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे पर रोब गांठने के लिए, दूसरों के सामने अपनी बुजुर्गी का इजहार करने के लिए, मखलूक के सामने अपने आप को नमाजी जाहिर करने के लिए, या किसी से डर कर किसी की रियायत में किसी मखलूक के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए नमाज पढ़ने के लिए गया है। नमाज तो वो भी उसी तरह अदा कर रहा है जैसे दूसरे अल्लाह के बंदे अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी कयाम कर रहा है, वो भी किरत कर रहा है, वो भी रुकू कर रहा है, वो भी सजदा कर रहा है, लेकिन उसके सजदे, उसका रुकू, उसकी तिलावत, उसका कयाम, उसका कुऊद, उसका सुजूद, उसका सलाम, उसमें सब मखलूक की रियायत शामिल है। दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है या दूसरों से डर कर कर रहा है, तो वो नमाज उसकी अपनी नज़र में तो नमाज है, लेकिन अल्लाह के लिए वो नमाज नहीं है। वो नमाज अल्लाह के बंदों के लिए है या अल्लाह के किसी खास बंदे के लिए है, इसका मतलब नमाज में रियाकारी हो सकती है। यही हाल ज़कात का है। बहुत से अल्लाह के महरूम किस्म के बंदे हैं जो देते तो हैं अल्लाह के नाम पर ज़कात, लेकिन मंशा उनका ये होता है कि उनकी सखावत के शोहरे हो जाएं, लोग ये समझें कि बहुत बड़े रईस आदमी हैं, लिहाजा वो दिखावे के कुछ ऐसे सामान कर लेते हैं और कुछ ऐसा देने का अंदाज अख्तियार कर लेते हैं कि जिससे पाने वाले को तकलीफ भी होती है। कुरान में एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए ताकीद करके फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुबतिलु सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, ऐ ईमान वालों तुम अपने सदकात को एहसान जतला कर और जिसको दे रहे हो उसको तकलीफ पहुंचा कर अपने सदकात को बातिल और बेकार और जाया न करो। जब तुमने ये समझ लिया कि हम एहसान करके दे रहे हैं, जब तुमने उसको जता दिया, जब तुमने उसको चिता दिया, ये दो जुमले देते वक्त तल्ख उसके सामने कह दिए कि उसका दिल दुख गया, वो मजबूर है, वो गरीब है, तुमसे लेने पर वो मजबूर हो गया, लेकिन तुमने उसको चिता कर, उसको जता कर, उसको तकलीफ पहुंचा कर दिया, एहसान जता कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारा ये देना बातिल है, ये मेरी राह में देना नहीं हुआ, इसलिए कि तुमने मेरा एक फरीदा अदा किया है, कोई एहसान नहीं किया है। वो चीज़ जो मैंने तुम पर फ़र्ज की थी वो तुमने अपना फ़र्ज और अपनी ड्यूटी अंजाम दी है, कोई एहसान नहीं किया है कि जो तुम्हें देश को दे रहे हो उसको तकलीफ़ पहुंचाने का हक हो। इसी तरह हज का मामला भी है। हम और आप अपनी नज़रों से ये देखते हैं कि बहुत से हुज्जाज किराम, अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह उनके हज को कबूल फरमा ले, हम बदख्वाही नहीं करते, लेकिन हमारी आंखें देखती हैं कि वो हज अल्लाह के लिए, बज़ाहिर तो वो उसी तरह हज के लिए जाते हैं और वैसे ही हज करते हैं, लेकिन तरह तरह की दुनियावी बातें करके, रियाकारी की बातें करके अपने अमल सालेह को बर्बाद कर लेते हैं। जाने से पहले अपने सामानों को ऊपर जो पैकिंग, जो अपना अटैची और ये वो लिए जा रहे हैं, अभी हज का इरादा किया है तो घर ही से अपने नाम के साथ हाजी साहब लिखवा लेते हैं, हाजी लकब बढ़ा लेते हैं। इसी तरीके पर वहाँ पहुँचने के बाद तवाफ़ कर रहे हैं तो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उमरा कर रहे हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं, और जियारत कर रहे हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं, और सही कर रहे हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं, और फिर वो फोटो अपने अजीजों और अपने कराबतदारों और अपने रिश्तेदारों को दिखा रहे हैं। क्या मतलब इसका? तुम अल्लाह का की एक हुक्म की तामील करने के लिए गए हो, तो फिर ये शौक क्यों तुम्हारे दिल में कि तुमको इबादत करते हुए, तुमको नमाजें पढ़ते हुए, तुमको तवाफ करते हुए, तुमको सही करते हुए, तुमको जियारत करते हुए तुम्हारे अज़ीज़ अक़रबा दोस्त अहबाब देखें। और इस इंटरनेट के दौर में तो अजीब आलम है, अभी वहीं हैं, उमरा कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, उसी हालत में उनके अहबाब उनके साथी फोटो खींच खींच कर नेट के जरिए उनके घर वालों को भेज रहे हैं कि इसी वक्त तवाफ कर रहे हैं वो इस वक्त। तो इसका मतलब क्या? ये किसको खुश कर रहे हो? किस पर रोब जमा रहे हो? हासिल कलाम ये है कि नमाज में भी रिया हो सकती है, वो नमाज अल्लाह के लिए नहीं है बल्कि बंदों को दिखाने के लिए है। जकात में भी रिया हो सकती है, वो जकात अल्लाह के लिए नहीं है बल्कि अल्लाह के बंदों के सामने अपनी बुजुर्गी झाड़ने के लिए है। इसी तरीके से हज में भी रियाकारी हो सकती है, और वो हज खालिस अल्लाह के लिए न होकर रिया के जरिए से बंदों के लिए हज हो जाएगा। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह फरमाते क्या सोमोली रोजा होगा तो बस मेरे ही लिए होगा। नमाज पढ़ने वाला ये समझ रहा है कि हम अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन रियाकारी के जरिए से उस नमाज को उसने जाया कर दिया, अल्लाह के लिए नहीं रही। वो खुद समझ रहा है कि ये नमाज अल्लाह के लिए है, हकीकत ये है कि वो अल्लाह के लिए नहीं है। जकात देने वाला जकात दे रहा है, लेकिन अपने बिगाड़ के जरिए, अपनी नीयत की फुतूर के जरिए उस जकात को वो जाया किए दे रहा है। वो खुद तो ये समझ रहा है कि हमने अल्लाह की राह में जकात दी है, लेकिन वो अल्लाह के लिए नहीं है। हज करने वाला हज कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, समझ ये रहा है कि हम ये अल्लाह का के लिए हज कर रहे हैं और एक इबादत कर रहे हैं, मगर अपने बिगाड़ के जरिए, अपनी नीयत के बिगाड़ के जरिए, अपने आमाल के फसाद के जरिए वो अपने हज को फासिद किए दे रहा है। वो हज अल्लाह के लिए नहीं, हालांकि वो समझ ये रहा है कि हम अल्लाह के लिए हज कर रहे हैं। मगर रोजा एक ऐसी इबादत है कि होगा तो अल्लाह के लिए होगा, और नहीं होगा तो होगा ही नहीं। यही वजह है कि एक रोजेदार जब रोजा वाकई रखता है, यानी रोजा नाम है खाने और पीने और नफसानी ख्वाहिशात को एक मुतय्यना वक्त में तक एक हद के अंदर, यानी तुलुए सुबह सादिक से गुरुबे आफ्ताब तक इन तीनों आमाल से अल्लाह के लिए रुक जाना। तो जो रुकता है इन तीनों चीजों से नियत करके, वही अपने आप को रोजेदार समझता भी है। बसा औकात ऐसा होता है कोई मरीज है, किसी मर्ज की वजह से रोजा नहीं रख पाया। हुक्म भी यही है कि अगर किसी उज्र शरई की वजह से तुम रोजा नहीं भी रख पाए हो तो बाहर निकलो, दूसरों के सामने आओ। तो ऐसा ना करो कि पान खाते हुए निकल रहे हो, सड़कों पर खड़े होकर चाय पी रहे हो, खाते हुए घूम रहे हो, बल्कि रोजे के एहतराम में रोजेदारों के सामने ऐसे आओ कि उनको एहसास ये हो कि तुम भी रोजे से हो। हालांकि वाकया ये कि तुम रोजे से नहीं हो उज़्र शरई की वजह से, और अगर वाकई उज़्र शरई है तो अल्लाह की तरफ से तुम पर कोई गिरफ्त भी नहीं है। जब वो उज़्र तुम्हारा खत्म हो जाए तो तुम कजा कर लेना, मगर तुम चूके उस तरह निकल रहे हो कि तुम्हारे मुंह के ऊपर पान की सुर्खी नहीं है, तुम किसी के सामने कुछ खा पी नहीं रहे हो, तुम्हारे होंठ खुश्क हैं, सामने वाला ये समझ रहा है कि तुम रोजे से हो, लेकिन तुम खुद समझ रहे हो कि हम रोजे से नहीं। वो तुम समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि रोजेदार जब वाकई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नियत करके मखसूस वक्त में मखसूस आमाल से रुकेगा, यानी रोजा रखेगा, तभी वो अपने को रोजेदार समझेगा भी, और अगर वो नहीं रखेगा तो दमाना लाख समझता रहे, दोस्त अहबाब लाख समझते रहे, सड़क वाले और महल्ले वाले लाख समझते रहे कि ये भी रोजे से है, मगर वो खुद अपने आप को रोजेदार नहीं समझेगा। क्या मतलब? रोजे में रियाकारी नहीं हो सकती है, रोजा रियाकारी के लिए नहीं हो सकता है। होगा तो बस अल्लाह के लिए होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया, अस्सौमुली, रोजा होगा तो बस मेरे लिए होगा। नमाज ऐसा भी हो सकता है कि हो मगर मेरे लिए ना हो, जकात ये हो सकता है कि हो और मेरे लिए ना हो, हज हो सकता है कि हो और मेरे लिए ना हो। हज करने वाला, जकात देने वाला, नमाज पढ़ने वाला ये समझ रहा है कि हम अल्लाह के लिए पढ़ना है, हालांकि वो अल्लाह के लिए नमाज नहीं है। मगर रोजा, जब रोजेदार खुद समझेगा कि आज हम रोजा हैं, तो वो वही रोजा होगा जो अल्लाह के लिए रखा गया होगा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, अस्सौमुली, रोजा होगा तो बस मेरे ही लिए होगा। वह आना अजीब ही, और जब ये है तो बदला भी मैं ही उसका दूंगा। मतलब क्या? नमाज का बदला भी यकीनन अल्लाह ही देंगे, हज का बदला भी अल्लाह ही देंगे, वो ना देंगे तो और कौन देगा? किसके पास कुव्वत है कि इन इबादात का बदला दे सके? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद अल्लाह ने फरमा दिया, ए नबी, आप कह दिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इन अजरिया इल्ला अलल्लाह। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। इतनी मशक्कतों, इतनी मेहनतों, तबलीग दीन, तकालीफ, मशक्कत, इन सब चीजों का अजर मैं तुमसे नहीं मांगता, तुम दे भी नहीं सकते। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, इसका अजर तो बस अल्लाह ही अता करेगा। तो हकीकत यह है कि आमाल सालिहा जो भी हों, जो अल्लाह के लिए हों, उसका अजर अल्लाह के सिवा कोई दे ही नहीं सकता। तो नमाज हो या हज हो या जकात हो या कोई भी नेक अमल और इबादत हो, अजर तो सबको अल्लाह, सबका अल्लाह ही देंगे। फिर अल्लाह ने मखसूस तरीके पर क्यों फरमाया कि रोजे का हम खुद अजर देंगे? इसको अब बस एक मिसाल से आपके सामने पेश करूं। देखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने भट्टी आग की सुलगवा कर और उस भट्टी में डाला, काहे के लिए? जुर्म ये था कि वो माबूद बरहक की इबादत और माबूदान बातिल की इबादत से रोकने की बात क्यों कर रहे थे? नमरूद का दावा यह था कि मैं खुद खुदा हूं, अना उही व उम्मीद, जिंदगी और मौत देना तो मेरे ताकत में और मेरे इख्तियार में है। और उसने भरे दरबार में ऐसा करके भी दिखाया कि एक बेकसूर इंसान को अपने पास बुलाया, यहां आओ, और फिर जल्लाद से कहा, इसकी गर्दन उड़ा दो, कसूर कुछ नहीं, सिर्फ अपनी आप को मालिक, जिंदगी और मौत का मालिक जाहिर करने के लिए भरे दरबार में बुलाया, एक मासूम बेगुनाह इंसान को बुलाया और बुलाकर जल्लाद से कहा, इसकी गर्दन उड़ा दो। जब उसकी गर्दन उड़ा दी गई तो फिर दूसरे को बुलाया। अब जाहिर है कि पहले वाले का वो अंजाम देख चुका था। क्या हुआ अंजाम? अब वो लरसता कांपता आया कि बस अब हमारी जिंदगी इतनी देर तक की है जितनी देर तक हम पहुंचकर बादशाह चलकर बादशाह के पास पहुंचे। लरसता कांपता, उसके सर पर मौत नाच रही थी, इस हाल में वो पहुंचा। और उसने बादशाह ने, नमरूद ने उससे कहा, क्या समझ रहे हो? जल्लाद को बुलाया। अब जल्लाद आ गया और उसको मौत अपने करीब नजर आने लगी, और उसके बाद कहा, जाओ माफ किया बैठो। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, देखा तुमने, मौत और जिंदगी का मैं मालिक हूं कि नहीं? जिसको मैंने चाहा मौत दे दी, जिसको चाहा जिंदगी दे दी। जो अपनी जिंदगी के आखिरी साहतें गिन रहा था और ये समझ रहा था कि मौत मंडला रही है मेरे सर पर, मगर मैं मौत नहीं देना चाहता था इसलिए मौत नहीं दी। और जो खुशखुर्रम आया था और ये समझ कर आया था कि शायद बादशाह हमको कुछ इनाम देंगे, और उसको हमने चाहा कि मौत के घाट उतार दें, तो मौत से मैंने उसको आशना कर दिया और मौत दे दी उसको। अना उखी वो उम्मीद, मैं जिसको चाहता हूँ जिंदगी देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ मौत देता हूँ। ये उसका दावा था। हज़रत इब्राहिम, कुरान में उसकी सब तफसीलात हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़ुबान को कैसे बंद किया और फिर क्या हुआ। आखिर अंजाम ये कि जब वो ये समझ गया कि इन पर काबू नहीं पाया जा सकता, इनके दलाइल की काट हमारे पास नहीं है, इनकी बातें दिलों में उतरने वाली हैं, वहदत परस्तों के इमाम हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो आखिरी फैसला उसने ये किया कि अब हम इनको जला कर ख़त्म करेंगे और इबरतनाक सजा देंगे। चुनांचे उसने आग रोशन कराई, ज़बरदस्त लपटे मारती हुई आग, और उसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डलवाया। इधर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और उधर हवा का फरिश्ता फौरन हाजिर, वो जो अल्लाह की तरफ से हवाओं का के चलाने और रोकने और तेज और धीमा करने का इख्तियार और जिसको उसका मालिक बनाया गया था और उसके हाथ में इख्तियार दिया गया, वो आया। इब्राहिम, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मुझे आप पहचानिए, हवाएं मेरे इख्तियार में हैं, आपके ऊपर ये मुसीबत वक्त का वक्त आया है, मैं क्या मदद कर सकता हूं, आप हुक्म दें तो इतनी आंधी झक्कड़ चढ़ा दूं कि ये सारी आग उड़ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पलट कर जवाब भी नहीं दिया, गर्दन भी नहीं उठाई। जब उसको जवाब नहीं मिला तो फौरन पानी का फरिश्ता आया, उसने यही बात कही, इब्राहिम आप कहें तो मैं यहां पानी ही पानी कर दूं, ये सारी आग बुझा दूं और आपको इस मुसीबत से नजात दिला दूं। हजरत इब्राहिम ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। एक एक करके फरिश्ते आते गए जो आपको खत्म करने वाले थे और आपको गुलजार से बदलने की ताकत रखते थे, आपको फना कर सकते थे, अल्लाह ने उनको इख्तियार किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ रहे थे कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, कोई झूठे दावे करने नहीं आए, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहदत परस्तों के इमाम थे, वो अल्लाह पर यकीन रखते थे, गैरुल्लाह से बात करने को भी तैयार नहीं थे, फरिश्ते से भी बात करने को तैयार नहीं थे। उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि जिस जात के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं वो जात मौजूद है, उसको जो करना है फैसला करेगी, हम क्यों कहें कुछ। आखिर में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन आए, उनका इब्राहिम आप मुझे तो पहचानते हैं, मेरी तो आमद और रफ्त आपके पास है, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील हूं, आप बताइए इस मुसीबत की घड़ी में मैं क्या आपकी मदद करूं, जल्दी बताइए। तो चूंकि वो फरिश्तों के सरदार थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते जाते थे और उनके मकाम और मर्तबे को हजरत इब्राहिम खूब अच्छी तरह जानते और पहचानते थे, तो उनको जवाब दिया, सर उठाकर बस इतना कहा, अम्मा इलैक फलाह, जहां तक तुम्हारा मामला तो तुमसे मुझे कुछ नहीं कहना, वो देख नहीं रहे जिनके लिए सब कुछ हो रहा, जो उनको मंजूर हो उनकी रजा पर मैं राजी हूं, उन्हीं ने मुझे नबी बनाया, उन्होंने मुझे कारे नबूवत अता किया, उन्हीं की ड्यूटी में हूं मैं, उन्हीं के हाथ में मौत और जिंदगी है, वो चाहेंगे उनको मेरी जरूरत होगी तो इस दुनिया में मुझे जिंदा रखेंगे, जरूरत नहीं होगी जलवा देंगे, जलवाएं या जिंदा रखें उनके दीन का मामला है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं उनके अलावा किसी की तरफ इल्तिफात करूं। फिर क्या हुआ, इब्राहिम की इस गैरत का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, कुल ना, हमने कहा, जिब्रील से नहीं कहलवाया, मीकाईल से नहीं कहलवाया, इज़राइल से नहीं कहलवाया, किसी फरिश्ते के मारेफत नहीं कहा कहलवाया, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं हमने खुद आपको बराह रात मुखातब किया, कुल ना, हमने कहा, या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ ना तू सलामती के साथ ठंडी हो जा इब्राहिम के ऊपर। ये इब्राहिम की गैरत थी, ये अल्लाह के बदला देने की बात थी, आप समझे, मतलब ये है कि वहदत परस्तों के इमाम होने की वजह से इब्राहिम ने अपनी तकलीफ और तकलीफ को दूर करने की बात जब किसी फरिश्ते तक से नहीं की तो अल्लाह कहते हमने खुद कहा, हमने बराहरात आग को मुखातब करके कहा, ये इज्जत बख्शी, ये एजाज बख्शा हमने अपने तौहीद के मतवाले बंदे को जो हमारे ऊपर यकीन रखने वाला था। यही इसी मिसाल से आप समझ लीजिए कि जब अल्लाह फरमा रहे हैं अस्सौमुली रोजा मेरे लिए है वह अना अजीब ही मैं ही बदला दूंगा, मतलब क्या, मैं किसी दूसरे के जरिए बदला नहीं दिलवाऊंगा बल्कि रोजेदार को, चूंकि उसने मेरे लिए तकलीफ बर्दाश्त की होगी, मेरे लिए भूखा रहा होगा, मेरे लिए प्यासा रहा होगा, प्यास लगी होगी, बुझाने का सामान मौजूद भी होगा, भूख लगी होगी, भूख को मिटाने का सामान मौजूद भी होगा, मगर मुझे खुश करने के लिए, मेरे हुक्म की तामील के लिए उसने भूख की शिद्दत को और प्यास की तड़प को बर्दाश्त किया होगा, इसलिए इस भूखा रहने और प्यास रहने की जजा भी मैं ही दूंगा। इसीलिए रोजेदार जब रोजा अफ्तार करता है तो इफ्तार के बाद एक दुआ है इफ्तार के बाद की, क्या, ज़हब ज़मा वतल्लतिल उरूकु वसबतल अज्रु इंशा अल्लाह, प्यास मिट गई, रगें तर हो गईं और वो अज्र जिसका वादा अल्लाह ने किया है वो इंशाअल्लाह साबित होगा और वो हमको मिलकर रहेगा। ये है रोजे की हकीकत और ये है रोजे की अहमियत। अल्लाह तबारक व ताला हमको अपने परवरदिगार के हुक्म की तामील की सही तौर पर तौफीक अता फरमाए और फिर उस तामील के नतीजे में जो अजर खास रोजे का उन्होंने मुतय्यन कर रखा है उससे हमको सरफराज करें। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।